सुख यहाँ लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सहजानंद जी लिखित सुखया नामक ये प्रथम पुस्तक है। प्रथम भाग के पृष्ठ संख्या 82 पर हम आगे 82, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है वहां से हम पढ़ेंगे अभी 82। देखो, जैसे हम हैं वैसे ही बाहर देखे, यानी हम चैतन्य स्वरूप है तो बाहर भी वैसे ही देखना अन्य जीवों को। पेज नंबर है 82, सुख यहाँ 82 नंबर का पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। कौन है? शोभा है क्या? मंदु भाई ने ओके, पुस्तक है ना आपके पास? 82 पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जैसे हम हैं वैसे ही बाहर देखें, किसी भी जीव को गैर मत समझो, अपना विरोधी मत समझो, हम तो उसे अपने समान ही समझे। लास्ट टाइम कहीं हम गए थे शिविर में कहीं, तो वहाँ के लोग कुछ बता रहे थे, वहाँ के जो कोई कार्यकर्ता मुख्य वगैरह के, ये विरोधी ऐसा कर रहे हैं, उधर ऐसा, मतलब किसी को विरोधी क्यों कह रहे हैं हम? अरे हम आप सब एक ही भगवान के शिष्य है, महावीर भगवान के, आप विरोधी अपने मुंह से क्यों कह रहे हो आप विरोधी विरोधी करके? तो हम तो उसे अपने समान ही समझे, यह बहुत ही संभव है, आपका व्यवहार देखकर पवित्र बन जाएंगे, अपने उस कषाय को छोड़ देंगे। पर जो दूसरों के प्रति बुरे ही बुरे ख्याल करते हैं तो वे तो स्वयं तुरंत बुरे हो जाते हैं। अरे उस ख्याल से तो स्वयं अपने आप दुखी तो हो ही जाता है। भाई, परमार्थ की बात तो यह है, अपने को इस तरह देखे कि मैं केवल परिणाम करने वाला हूँ, अपने परिणाम के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं करता। हमने देखा ना भाव स्वरूप, पहले शब्द आया था भाव स्वरूप, यहाँ परिणाम कह रहे हैं, परिणाम यानी अपने पर्याय रूप से परिणामित हो रहे हैं। हर जगह हर समय केवल अपने परिणाम के लिए अपना परिणमन करता हूँ। जब मैंने पहले भी कुछ किया नहीं, न आगे कुछ कर सकूंगा। कुछ किया नहीं ने परद्रव्य में हमने कुछ नहीं किया है और ना ही इसके आगे कभी करने वाले हैं। केवल अपना परिणाम बनाया था, अपना ही परिणाम बनाया है। ये बनाया था यानी भूतकाल, वर्तमान में बना रहा है और अपना ही परिणाम बनाता रहूंगा। यानी जीव अपने पर्याय रूप से ही परिणमता रहेगा, वो परद्रव्य की पर्याय में कोई हेरा फेरी, मदद, असर, थोड़ा कुछ करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, कुछ नहीं कर सकता। व्यवहार को भी देखे तो क्या बात है। एक रहेगी क्या? केवल अपना परिणाम बनाया था, अपना ही परिणाम बनाया है और अपना ही परिणाम बनाता रहूंगा, ये पढ़ा था हमने। व्यवहार को भी देखे तो क्या बात है, सबसे आप बोलते हैं लेकिन यह पता आपको चल जाए, यह बोलता तो प्रिय है किंतु इसका परिणाम बड़ा खोटा है, तो आपको उसके प्रति ईर्ष्या हो जाएगी और किसी से आपका बिगाड़ भी हो जाए और यह आपको विदित हो जाए कि इसका परिणाम अपने कल्याण के लिए था तो उससे प्रेम बना रहेगा। सब तो अपने परिणाम के अधीन ही खेल बना है, परिणाम के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। कोई जो कर्तव्य बुद्धि करेगा वह संसार के जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकेगा। कर्तव्य बुद्धि का अर्थ है ये मेरा कार्य परद्रव्य का, ये मैं कर रहा हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, तो कहते वो इस संसार से चक्र से नहीं छूटेगा। अपने और को यह स्वयं जान जाए कि मैं एक भावात्मक पदार्थ हूँ, भावने भाव स्वरूप, और वो उसका कार्य भी क्या होगा, परिणमने का अपने में, और मैं केवल अपने परिणाम को ही करता हूँ। इतना ही यह कर्तव्य भोक्तृत्व है, क्या कहते हैं, यानी मैं अपने परिणाम को करता हूँ, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कार्य है, इतना ही मैं कर सकता हूँ, और अपने परिणाम को ही हम भोग सकते हैं, अन्य किसी को नहीं। तो इतना ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसे अपने आप को निराला बना ले। इस विश्व के किसी भी पदार्थ के साथ कोई हमारा संबंध नहीं है, ना ही हम उनका कार्य कर सकते हैं। इस तरह से अपने को निराला, स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकृत करना है, उसी को एक्सेप्ट करना है। हमने मान रखा है ना अन्य अन्य का, हमारा ये कर्तव्य है, हाँ अभी हम, हमारा ये परिवार है तो हमारा इतना कर्तव्य बनता है, तो हमने अपने को उतना ही मान के रखा है, अपने को जीव समझ कर कभी सोचा ही नहीं हमने। आपको यह अनुभव हो जाएगा कि मैं अंतर के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं अपने परिणाम को सोच समझ कर चलूंगा। 83 पेज। सब कुछ मैं स्वयं हूँ, किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम जो चीज़ें जानने में आ रही है वो भी अपने में ही जान रहे हैं, पर को देख देख कर नहीं जानना हो रहा है, ये तो अपने ज्ञान की पर्याय उसको जानने रूप परिणमित हो रही है, यानी जीव अपने में ही सब कुछ हो रहा है, उसका परिणाम जानने का कार्य भी अपने से अपने में ही हो रहा है। चलूंगा ना परिणाम, मैं अपने परिणाम को ही करता हूँ, बस इतना ही है, ये वही मेरा है और कुछ मेरा नहीं है। सोच समझ कर करूंगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो तो परिणाम नहीं तो अपने वो तो इसका स्वामी बनाया, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं चलूंगा, सोच समझ कर चलूंगा, नहीं वो मेरे है इतना ही समझ कर चलूंगा, अन्य के मेरे, हाँ मैं परिणाम के और कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे परिणाम। सब कुछ मैं स्वयं हूँ, किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा दृष्टा बने तो इससे बढ़कर दुनिया में और कोई वैभव नहीं है। हमारा सच्चा वैभव तो जानते ही नहीं हम, और फिर अन्य जो वैभव नहीं है उसके पीछे लगे हैं, परंतु वो धन संपत्ति आदि को जो जानने रूप कार्य अपने में है, और क्या हो रहा है वहाँ उसके प्रति जो लोभ रूप परिणाम है अपने में हो रहा है, बाकी धन के साथ तो कोई संबंध है ही नहीं अपना। उसको देखकर जहाँ अपने में कोई उसके रखने के परिणाम, बढ़ाने के परिणाम को, उसको लोभ के परिणाम जो कुछ हो रहे अपने में, तो जीव तो अपने में बस परिणाम करता है, बाकी पैसे से उसका कुछ लेना देना नहीं, यानी कि किसी से कोई ताल्लुक नहीं। आगे बढ़ते 28 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। पंगोर दृष्टि यथा अंधेन तथा स्वस्व नोतनो दर्शनम मात्रमस्म्यस्मात् स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। पहले हमने ये आत्म भावना में ये उदाहरण देखा था, एक पंगु था और एक अंधा था, आप थे कि नहीं अनीता तभी, एक अंधा था एक पंगु था, तो पंगु चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, तो क्या किया, अंधे के कंधे पर पंगु बैठा और उसने हाथ में लकड़ी ली, काठी ली, तो उसको वो रास्ता बताता गया और ये चलता गया, क्योंकि पंगु चल रहा है, तो क्या पंगु चल रहा है क्या, तो कहते हैं तो कहते अंधा देख देख कर चल रहा है, क्यों, पंगु की आंखों से, तो क्या अंधा देख सकता है? तो नहीं। अभी यहाँ क्या कहना चाहते हो देखेंगे, इनका क्या कहना है, देखो, पंगो हो दृष्टि यथा अंधे न, देखो जैसे लंगड़े की दृष्टि अंधे में नहीं होती। वही उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हमने जो समाधि तंत्र में देखे थे ना, आत्मभावना में, वही यहाँ पर रिपीट हुए। इन्होंने भी वही आचार्य उनके ग्रंथ पढ़े हैं, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी तो बहुत बड़े आचार्य हुए थे, है ना। जैसे लंगड़े की दृष्टि अंधे में नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा की दृष्टि शरीर की नहीं है। ये ज्ञान तो आत्मा का, शरीर का नहीं, वो तो आंखें कोई देखने का कार्य नहीं कर रही, किंतु आत्मा की है। आत्मा की दृष्टि शरीर की नहीं है, किंतु आत्मा की है। मैं तो दर्शन मात्र हूँ, इसलिए मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूँ। लोग कहा करते हैं कि यह मनुष्य देखता है, जानता है, परंतु मनुष्य से उनका प्रयोजन शरीर से है। ये किसको मनुष्य कह रहे हैं? शरीर को। और ये शरीर देखता है, कहते भी ना ये तो ब्रेन है ना, वो ऑर्डर छोड़ता है, फिर वो तो ऐसे ऐसे हाथ उठाता है। ये पुद्गल को ही वो ज्ञान है, ऐसा सोच समझ कर मान कर वो कह रहे हैं। तो यह शरीर न तो देखता न जानता है, देखने जानने की शक्ति तो जीव में है। ज्ञान दृष्टि तो जीव में विद्यमान है, वह शरीर में नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे लंगड़े और अंधे आदमी मिलकर चलने का काम करते हैं, अर्थात अंधा तो चलता है और लंगड़ा उसके कंधे पर बैठता है, ऐसा देखकर लोग कहते हैं अंधा देखकर चल रहा है। परंतु उस जगह तो लंगड़े की दृष्टि काम कर रही है, अंधे की दृष्टि है ही नहीं, वो तो देख ही नहीं सकता है। लंगड़ा उसको देखकर बोल रहा है या उसको सूचित कर रहा है। परंतु इस संबंध में ऐसा कहा जाता है कि अंधा अपनी दृष्टि से काम कर रहा है। इसी तरह दृष्टि तो जीव के है, यानी ये जो देखने का जानने का कार्य वो तो जीव का है, पर जीव का इस समय संयोग संबंध शरीर से है। इस कारण लोग यह कहते हैं कि यह मनुष्य, यह प्राणी देख रहा है, जान रहा है। यानी किसको कह रहे? वो शरीर को देखकर, क्योंकि उसको क्या आत्मा आत्मा कुछ मालूम नहीं है। जो सामने दिख रहा है पुद्गल का ढांचा, कहते ये देख रहा है, जान रहा है। कहते ना आंखें देखने का कार्य करते, यानी ये जड़ है, आंख है तो अचेतन है, पुद्गल है, शरीर का अंग है, वो जानने देखने का कार्य नहीं करते। परंतु देखने जानने वाला तो आत्मा ही है। लंगड़ा तो चल नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता। यदि ये दोनों अलग अलग रहे तो दोनों बेकार है, न लंगड़े का कोई काम बने न अंधे का कोई काम बने। दोनों जब मिल जाते हैं तो हरकत करने लगते हैं। इसी तरह आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हो जाए, आत्मा अलग हो व शरीर अलग हो जाए, तो दोनों की हरकत बंद हो जाती है। आत्मा बाहरी दिखावटी क्या करे? दिखावटी क्या करे, यानी वो तो बाह्य जो कोई अन्य वस्तुओं की जो कुछ इधर से उधर, ये क्या करे? आत्मा क्या करे करते हैं? ये तो पुद्गल का पुद्गल के साथ जो कुछ वहाँ तो बन रहा है कार्य, और शरीर भी क्या करे? यानी शरीर ना जानने का कार्य कर रहेगा और आत्मा ना ये बोलने का वगैरह उसका कार्य है ही नहीं। अभी कहने में आता है कि ये जीव बोल रहा है। आत्मा और शरीर जब दोनों मिलते हैं तो आत्मा भी हरकत करता है और शरीर भी हरकत करता है। ऐसी अवस्था में शरीर की हरकत है उसका कार्य, शरीर की हरकत देखकर दुनिया के लोग जीव को कहा करते हैं यह सब जीव कर रहा है, यह सब जीव की हरकत है। शरीर का जो हलन चलन है, बोलना है, चलना है, वो तो जीव कर रहा है, ऐसा कहते हैं। पर जो ज्ञानी जीव है, भेद विज्ञानी जीव है। ज्ञानी किसको कहेंगे? आत्मानुभवी है। भेद विज्ञान क्यों? शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जान लिया है उन्होंने। 83 पेज। तो कहते जो ज्ञानी जीव है, भेद विज्ञानी जीव है, वे जीव का काम जीव में देखते हैं और उनको परस्पर केवल निमित्त मानते हैं। लक्षण के द्वारा दो भिन्न पदार्थों को जुदा, क्योंकि इकट्ठे एक ही जगह रह रहे, जहाँ शरीर है वहीं पर आत्मा के प्रदेश है। आत्मा जानने देखने का कार्य कर रहा है और शरीर में तो स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह उसकी कार्य हो रहा है। वैसे हलन चलन वगैरह दोनों में भी क्रियावती शक्ति है, एट ए टाइम दोनों की भी क्रिया चलती है। तो हम क्या लगता है ये शरीर ही मैं हूँ और मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, ऐसा उसको भाषित हो रहा है, ये भूल है उसकी। तो ज्ञानी जानते हैं कि उनमें तो केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अज्ञान इसी को कहते हैं कि है तो निमित्त और मान ले उसे कर्ता, यही उसका अज्ञान है। निमित्त को उसने कर्ता मान लिया। निमित्त तो परद्रव्य है, वो अन्य द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता और ये उसको कर्ता मान बैठा है। जैसे कर्म को माना है निमित्त और अज्ञानी मानता है कर्ता, यानी कर्म तो निमित्त है, अज्ञानी उसी ने उसी को कर्ता मान लिया। होता क्या है, जीव तो भाव ही करता है, कर्म स्वयं बंधन को प्राप्त होता है। ये कर्म क्या है, तो कारमान वर्गना नामक पुद्गल स्कंद है, वो स्वयं आकर जीव के प्रदेश में पुराने कर्मों के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, उसको कहेंगे बंध हो रहा है। वो तो स्वयं है उसका कार्य, कर्म की अवस्था कर्म में कर्म के कारण होती है और जीव का उसमें मोह राग द्वेष निमित्त है। यहाँ पर भाई कर्म तो केवल अपना परिणमन करने वाला है, अरे वो तो जड़ धूल है, वो जीव को क्या परिणाम आवेगा। तो हमने तो सारा, अरे वही हमको दुखी बनाते हैं, क्या करे वो अच्छा हो जाएगा तो हमको पलट जाए तो थोड़ा सुख मिल जाएगा, थोड़ा धन मिल जाएगा। यानी जैनियों ने तो ईश्वर तो नहीं करता है, पर कर्म हमारा सब कुछ करता है मान लिया। क्यों, कर्म तो केवल अपना परिणमन करने वाला, अपने ने उसका अपना स्वयं का। जैसे जीव के विकार रूप से होने वाले परिणाम में निमित्त कर्मोदय है। कर्मोदय का अर्थ होता है पुराने कर्मों का उदय, अभी वो खिर रहे हैं उस तब उसका जो कोई हम कहेंगे उसका निमित्त है, और जीव स्वयं उस विकार रूप परिणाम का है। वो कर्म उसको जबरदस्ती कुछ नहीं करते हैं, वो वहां बस मौजूद है, उपस्थित है, और जीव उस विकार रूप से परिणमता है। उसको कर्ता के रूप में देखना यही अज्ञान है। तो कर्म हमको रुलाता है, कर्म हंसाता है, कर्म हमको क्रोधी बनाता है, कर्म हमको लोभी बनाता है, क्या करें हम तो कुछ नहीं करना चाहते, हम तो बहुत शांत हैं, अभी कर्म का उदय आया क्रोध कर्म का, इसलिए हम क्रोध करते हैं, ऐसा है ना। हम तो बहुत शांत है, पर बच्चे ऐसा करते तो बहुत गुस्सा आता है। ये सारा यानी निमित्ताधीन इतना उसका आदत हो गई है, तो यही अज्ञान है। प्रत्येक पदार्थ को उनके ही अस्तित्व में देखना, उनके ही अस्तित्व में, उसका तो अस्तित्व स्वयं में है ही, उसका परिणमन भी उसमें स्वयं है। अस्तित्व किसको कहेंगे, सत, सत्ता, और वो सत यानी सत्ता कैसी होती है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होती है। तो प्रत्येक पदार्थ की अपनी अपनी सत्ता है, तो उसमें जो उत्पाद व्यय होगा, उसमें जो परिणमन होगा, उसके अपने कारण होगा, और हमें वो अनिष्ट लगता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ को उनके ही अस्तित्व में देखना, एक से दूसरे का अपनत्व न समझना, अपनत्व यानी उसका कोई संबंध मत लगाना, उसमें कोई कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं, यह ज्ञान है। कितने एक ही वाक्य में कितना बता दिया कि प्रत्येक पदार्थ को उनके अपने अस्तित्व में देखना, यानी प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व उसके अपने अपने में है, एक एक परमाणु का अस्तित्व उसमें अपने में है। भले स्कंद रूप से एक वस्तु दिख रही है, ये पेंसिल आपको एक पेंसिल दिख रही है, इसमें अनंत परमाणु है, इसके एक एक परमाणु का अस्तित्व उसके अपने में है। इसमें से कौन सा परमाणु छूटकर उसकी अन्य क्या अवस्था होनी, वो उसमें है। ऐसे ही यहाँ पर भी हर चीज जो अपने अस्तित्व से है, किसी दूसरे के साथ उसका कोई संबंध नहीं, अपनत्व न समझना नहीं, उसका संबंध नहीं समझना, यह ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहेंगे। हमारा अपना अस्तित्व अपने में ही है, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मैं अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूँ, शरीर में मेरा कोई अस्तित्व नहीं और शरीर का अस्तित्व मेरे में नहीं। हमारा गुण पर्याय हम में ही है, इस ज्ञान स्वरूप आत्मा का सर्वस्व, सर्वस्व अपना सब कुछ आत्मा ही है, हम कहते ये हमारा सर्वस्व है, कोई कहेगा धन हमारा सर्वस्व है, हमारे बच्चे हमारे सर्वस्व है, तो इसका सब कुछ क्या है? स्वयं ही सब कुछ है, आत्मा ही उसका सब कुछ है। देखो क्या कहते हैं, हमारा अस्तित्व अपने में ही है, हमारा गुण पर्याय हम में ही है, क्योंकि इसका अस्तित्व क्या है, गुण और पर्याय स्वरूप ही तो वस्तु बनी है, द्रव्य बना है। इस ज्ञान स्वरूप आत्मा का सर्वस्व आत्मा ही है, इसके बाद बाहर अन्य से क्या संबंध है, यानी दूसरे के साथ शरीर के साथ संबंध नहीं तो अन्य वस्तु के साथ कैसे कोई संबंध होगा। मैं हूं और परिणमता रहता हूं, मैं हूं का अर्थ है बस मेरा अस्तित्व है, अनादि से है, आज है, अनंत काल तक रहने वाला, और मैं कैसा हूं तो परिणमता हूं, तो परिणामता हो तो दूसरे की मेहरबानी हो जाए तो परिणमन करूं ना, मुझे सुखी होना है तो कर्म थोड़ा मोड़ा पड़े साथ, तो अपने को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये कहते हैं मैं हूं और परिणमता रहता हूं, इतनी ही मेरी सारी दुनिया है। और देखो यहाँ तो ऐसा वैभव है उसका कि चैतन्य स्वरूप है, जानन देखन रूप परिणमित हो रहा है, वही उसका सारा वैभव, अपने अनंत गुणों के वैभव रूप से उसका परिणमन चल रहा है। थोड़ा सा कहीं क्षणिक एक पर्याय में राग है तो उसका अपना सब कुछ मान लिया, और परद्रव्य के साथ शरीर के साथ संयोग हुआ तो वही मैं हूँ मान लिया, और अपना इतना बड़ा वैभव वो भूल गया, वो इतने राग के आड़ में तो उसको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा है, और शरीर मैं हूँ तो उसकी अवस्था कैसे रखूँ कैसे रखूँ, और ये जो लोभ है या ये जो मान्यता है मिथ्यात्व है शरीर मैं हूँ और उसको ठीक ठाक रखने की, तो उसके पीछे पागल हो रहा है और स्वयं दुखी दुखी हो रहा है। मन में ये नक्की करना है कि मैं जुदा हूँ, शरीर जुदा है, उसका परिणमन उसमें है, उसके अपने कारण है, मेरा परिणमन मेरे में, मेरे अपने कारण, तो मैं मात्र परिणमन करने वाला हूँ। जानन देखन ये मेरा परिणमन है, ये राग है वो मेरा विभाव है, क्षणिक भाव है, जाने वाला भाव है, वो मेरा स्वभाव भाव नहीं है, यानी वो राग में भी एकत्व करने, वही तो मूल अज्ञान है कि शरीर से तो भिन्नता सभी जीव कहते हैं, अन्यमति भी कहते हैं। राग से जो भिन्नता की बात बताई है हमने आचार्यों ने, वो गजब की है। क्या मैं हूं और परिणमता रहता हूं, इतनी ही मेरी सारी दुनिया है। क्यों ऐसा न मानकर बाहरी पदार्थों को अपने में समझकर दुखी हो रहा है, यानी स्वयं ही दुखी हो रहा है। क्या माना इसने, मैं हूं और अपने में परिणमन कर रहा हूं, इतनी मेरी दुनिया है। इसने और सारी दुनिया की बाकी चीजें अपने में समा ली, मान ली उसने, इसके मानने से कुछ नहीं होता है, भ्रम पैदा किया उसने। तो कहते कि क्या कर रहा है, ये बाहरी पदार्थों को अपने में समझकर दुखी हो रहा है। जो इस अपने ज्ञान में आता है वह ही योग्य है, वह ही संसार में पूज्य है, पूज्यता पवित्रता से बनती है, पवित्र केवल रह जाना इसको ही पवित्रता कहते हैं। पवित्र केवल रह जाना है, मैं ज्ञान मात्र हूँ और ज्ञान मात्र रहना है, और हमने अपने को राग रूप माना, शरीर रूप माना, अन्य रूप माना, मैं माँ हूँ, मैं और हूँ और क्या क्या हूँ, तो कहते वो केवल नहीं रहा, पवित्रता नहीं रही, वो अकेला है और उसने अपने में सबको भ्रम से सबसे मिला हुआ मान लिया। यह अपना तो केवल जैसा है तैसा चैतन्य स्वरूप मानता रहे, मैं यह ही हूँ, इसके आगे मेरा कोई काम नहीं, न मेरी कोई इच्छा है। देखो इच्छा भी ये विभाव है, ये मेरा परिणमन तो ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और ज्ञान में मेरा परिणमन है, और इच्छा वाला वो तो विभाव है, क्षणिक है, जाने वाला भाव, कि न मेरी कोई इच्छा है और न मैं कहीं अन्यत्र जाना चाहता हूँ। ये अपने में है, अभी उसको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है, अपने में परिपूर्ण है वो, अभी और कहाँ, अपने से बाहर कहीं जा ही नहीं सकता, तो कहते कि अन्यत्र जाना चाहता है। जान गया कि मैं यह हूँ और स्वतः परिणमता रहता हूँ, इस तरह अपने ही स्वरूप की तरह रहे तो आत्मा का फिर कोई काम नहीं है। काम नहीं है अन्यत्र बाहर कोई उसका काम नहीं है। जानन का कार्य तो परिणमने का तो चल ही रहा है, इस परिणमने के सिवा और अन्य कोई उसका काम ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि कर सकते हो मगर अपन मत करो, ऐसा नहीं है। पर जो नहीं रह सकता है उसकी आत्मा का आकुल होना प्राकृतिक बात है। क्या कहते हैं, नहीं रह सकता है ने? जो ऐसा नहीं मानता है कि मैं हूँ और परिणमता रहता हूँ, मैं सब कुछ मेरे में हूँ, ऐसा नहीं माना तो क्या माना, शरीर रूप में हूँ, राग रूप में हूँ, ये परोसवे मेरी है, तो कहते हैं वो आकुल हुए बिना नहीं रहेगा। प्राकृतिक बात है ना, स्वाभाविक बात, यानी जो अपने में ऐसा नहीं रहता है उसको आकुलता होती है। मैं तो एक दर्शन मात्र हूँ, यह ज्ञान पर और दर्शन पर घटित कर रहा है। यहाँ दर्शन की बात उठाई थी उन्होंने, इसलिए दर्शन मात्र हूँ, प्रतिभास मात्र हूँ। प्रतिभास कहो, अवलोकन कहो, ये सब एक अर्थ में, ग्रहण कहो, ज्ञान दर्शन दोनों के लिए आता है ये शब्द। मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊं, बस यही एक कर्तव्य है। देखो, परिणमना तो अपना स्वभाव है, राग आदि को अपना मान मान कर रहे हैं इसलिए आकुलता हो रही है। जो अपना सच्चा सही परिणमन है उसी को जानते रहो और राग से विमुख होकर उसी में एकाग्र हो जाओ, तो ये निराकुलता की शुरुआत होगी, सुख की प्राप्ति की शुरुआत होगी। क्योंकि आत्मा में ही अपने सहज स्वरूप ही है कि ज्ञान आनंद में परिणमन करे, और हमने जबरदस्ती भ्रम मानकर दुख उत्पन्न किया है। आत्मा में ऐसा दुख करने का कोई स्वभाव नहीं है, पर्याय में हमने अपने को भ्रम रूप मानकर ये दुख उत्पन्न करके रखा है। तो अभी कौन आएगा उसको दुखों से मुक्त करने के लिए? कोई भगवान, कोई गुरु, कोई आएगा तो उसने अपने से ये भ्रम उत्पन्न किया, वो स्वयं ही उसको तोड़ने में समर्थ है। बस यही एक कर्तव्य है कि वस्तु वस्तु को स्वतंत्र जान ले। वस्तु वस्तु कहने मैं अपने को और प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र जान ले, इसी में पूर्ण ज्ञान होगा। पूर्ण ज्ञान होगा यानी हमें आत्मज्ञान होगा और वही स्थिरता से बढ़कर केवल ज्ञान को प्राप्त होगा। लोक में उस ज्ञान की महत्ता मानी जाती है जो जितना जितना बाहरी चीज को जानता जाए, जितना जितना बाहरी पदार्थों का आविष्कार करता जाए। क्या कहते हैं, लौकिक की बात करें तो हम तो पहले तो हमें माँ बाप ने स्कूल में डाला, फिर हम पढ़ते गए तो हमने इतना पढ़ा इतना पढ़ा, अरे वो आदमी कितना पढ़ा है उसने तो, हमने ऐसे कोई देखे है आपके आपके कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है, उसने वो मेडिकल की भी डिग्री ली है, फिर लॉ भी किया है, इंजीनियरिंग भी किया है, बहुत सारे डिग्री होल्डर है हमने देखे है ऐसे, तो उसको क्या कहने कहते हैं लौकिक में? देखो उसको कितना जानता है, तो जितना जितना जानता है उस ज्ञान की महत्ता मानी जाती। कहाँ? लौकिक में। ये जो आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट है जो कोई है तो कहते हैं कितना जानता है, पहले कुछ नहीं जानते तो आज के बच्चे कितना जानते हैं, वो तो क्या मोबाइल और कंप्यूटर और क्या क्या है ना, कितना कितना जानते हैं। पर अध्यात्म मार्ग में अभी इसके उल्टी बात कर रहे हैं, लौकिक में तो बाहर का जितना अधिक जाने वो ज्ञानी, और अध्यात्म मार्ग में ज्ञान की महत्ता उसमें बताई जाती है कि जितना जितना बाहरी पदार्थों के विकल्प छोड़कर अपनी ओर आता जाए, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता जाए, ज्ञान सामान्य मात्र अपने को लक्ष्य में ले। देखो क्या कहते हैं, बाहरी तो लौकिक में क्या मानते हैं सबको मालूम है, अध्यात्म मार्ग जो है मोक्ष मार्ग में है, ज्ञान की महत्ता किसमें है? तो जितने अधिक बाहरी पदार्थों के विकल्प छोड़कर अपनी ओर आता जाए, अपने में समा जाए, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता जाए। बहिर आत्मा यानी अपने को उसने शरीर रूप राग रूप माना था, अब जो आत्मा स्वयं है ज्ञान स्वरूप, उसने अपने को ज्ञान स्वरूप माना जाना अनुभव किया, ज्ञान सामान्य मात्र। ज्ञान सामान्य मात्र क्या अर्थ क्या होता है? स्वभाव। इसमें कोई भेद किए बिना, क्या जान रहा है, कितना जान रहा है, उसकी ज्ञान सामान्य अपने स्वभाव की बात है, जानन स्वभाव जो है। तो ज्ञान स्वभाव मात्र अपने को लक्ष्य में ले, यानी मैं स्वयं कैसा हूँ, ज्ञान सामान्य मात्र हूँ, इस तरह। और छोड़ो ज्ञान की विशेष तरंग, वितर्क, विचार, यानी उसके पर्याय का लक्ष्य छोड़कर उसके ज्ञान जो स्वभाव भाव है, जानन रूप स्वभाव, उसको लक्ष्य में लेना है। ऐसे सामान्य ज्ञान में अपने अपने को अनुभव कर तो परमार्थ में ज्ञान की महत्ता है, यानी अपने को सामान्य ज्ञान रूप से अनुभव करना, स्वभाव भाव से, चैतन्य स्वभाव से अनुभव करना, यही इसी में ज्ञान की महत्ता है। लोगों में बाहरी चीजों के अज्ञान की महिमा है, पर आत्मा ज्ञान से परमार्थ में आपकी महिमा है। इसमें कोई एक विशेष पदार्थ की बात ही न उठे, यह ज्ञान का ही स्वरूप है, अन्य पदार्थ का कुछ नहीं। क्या कहना चाहते, ये जो बाहरी भी जो जानना हो रहा है, इतने पदार्थों को जाना, मान लेते हैं हम लौकिक की बात है कि उसका बहुत सूक्ष्म है, तो बहुत सूक्ष्म है तो उसकी वो ज्ञान की महत्ता है कि बाहरी पदार्थों की महत्ता है? उसका ज्ञान ही उस रूप परिणमित हो रहा है, परंतु वो जानने की पूरी शक्ति है ना वहां पर, हम वो क्या जान रहा है, कितना जान रहा है, उसका लक्ष्य कर रहे हैं। जो इतना भी जान रहा है उसका परिपूर्ण स्वभाव उसके पीछे पड़ा है ना, ज्ञान का स्वभाव है। अभी हमने बात चल रही ना संडे को, सर्वज्ञत्व शक्ति है, ज्ञान गुण है, तो उसमें कितने जानने की शक्ति, तो सब कुछ जानने की शक्ति, तो सब कुछ यानी बाहर दृष्टि नहीं लेना, सब कुछ यानी अंतरंग में, यानी वो ज्ञान इतने पदार्थों को जानने रूप स्वयं में परिणमित होगा एक समय में। देखो इमेजिन करना, एक ही समय में केवल ज्ञान की जो पर्याय है, तो वही ज्ञान जो भी हम मति शुद्ध मान लेते, हम यहाँ सामने इसको जानने रूप परिणमते हैं, हमने नहीं ज्ञान आकार इस रूप में ज्ञान आकार हुआ, अब केवल ज्ञान की पर्याय को इमेजिन करो, वो ज्ञान स्वरूप रहते हुए भी अनंत अनंत द्रव्यों के, अनंत अनंत गुणों के, उसके पर्यायों के, अविभाग प्रति सबको भिन्न भिन्न, यानी इस रूप उसका ज्ञान परिणमित हुआ है, ये ज्ञान की अपनी शक्ति है, यही कह रहे हैं यहाँ पर। यानी हमें तो इतनी चीजों को जानने पर पदार्थों की महत्ता आती है, परंतु यहाँ तो ज्ञान की महत्ता आनी चाहिए, क्योंकि उस रूप परिणमा तो ज्ञान ने उसको जानने रूप परिणम किया, ये ज्ञान की विशेषता। इसमें महत्व ज्ञान का है, इसमें ज्ञान आएगा, इसको ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। और इसी ज्ञान की ऐसी महिमा है कि जिसके बल पर चिर संचित, यानी बहुत काल से इकट्ठा हुआ कर्म भी भस्म हो जाते हैं। ऐसा जाना है तो बस यह ज्ञान है, यानी ये जो कर्मों की अपने आप ये जो फिरना वगैरह जो होता है तो स्वयं में हो जाता है। जैसे यहाँ जीव राग द्वेष मोह करता है तो कर्म आकर वहाँ बनते हैं, कर्मानुवर्गणा कर्म रूप परिणमते हैं। अब ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता चला जाता है तो सारे जो पुराने जो कर्म है तो अपने आप फिरने लगते, कितने मात्रा में क्या क्या होकर एक समय ऐसा होता है कि सभी नष्ट हो जाते हैं और जीव मुक्त अवस्था प्राप्त कर ले। किसकी महत्ता? सारे ज्ञान की। जीव ने क्या किया? बस अपने को ज्ञान स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार किया, उसी को जानता रहा, इतना किया उसने और कुछ नहीं किया। तो तब भी करना पड़ेगा ना मुनि दीक्षा लेनी, ये लेनी पड़ी पड़ी पड़े की कुछ बात नहीं है, जो बाहर यथा योग्य होना है वो हो जाता है। इस जीव को तो कुछ करूँ करूँ, यानी मैं सदाचार तो पालू, व्रत तो अंगीकार करूँ, ये तो करूँ, यानी उसने अपने को मनुष्य मानकर ये करूँ कि नहीं करूँ ये प्रश्न उठाए। जो जिस भूमिका में राग आना है तो आता रहेगा, इसको मुख्यतः तो अपने स्वरूप की रखनी है। हाँ देखो यह क्या कहते हैं, चिर संचित कर्म भी भस्म हो जाते हैं, ऐसा जाना है तो बस यह ज्ञान है। यानी ये अपने को जानना ही वो तो ज्ञान की महत्ता है, ये तो पर को जानने में ज्ञान का क्या, ज्ञान का तो स्वरूप ही जानना, परंतु ये पर को केवल जान नहीं रहा है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है तो वो पर की महत्ता आती रहती है उसको, और इसको जानो उसको जानो उसको जानो और जानो और जानो और जानो, परंतु वो जानने वाले का जानने का नाम ही नहीं है। बाहर से कोई ज्ञान आने वाला नहीं है, ज्ञान तो अपने ही ज्ञान स्वरूप को ही हमको जानना है। स्वाध्याय भी हम करते हैं, स्वाध्याय भी करने का प्रयोजन क्या है, ये तो ज्ञानी हमें बताते हैं किस विधि से हमको अपने को जानना है। और बस स्वाध्याय करना है स्वाध्याय करना है स्वाध्याय करना है, इसको भी सुनना सुनो, मगर वो तो मूल अपना प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं वो देखना। सुनने का निषेध नहीं, भूमिका में होगा सुनना, क्योंकि हर एक का चिंतन अलग अलग होता है, हम हर एक ज्ञानियों की बात सुनेंगे समझेंगे, परंतु सुनकर उसका प्रयोग अपने अंदर में होना चाहिए। विज्ञान ज्ञान के स्वरूप को जाना करे, यही ज्ञान अन्य कुछ जानता है तो उसमें इसका कोई मान नहीं। क्या कहते, ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जाने और बाह्य अनेक चीजों को जाने तो उसमें उसका कोई मान नहीं, उसके कोई उसकी महत्ता नहीं। विज्ञान ज्ञान के स्वरूप को जाना करे, विशेष ज्ञान ज्ञान के स्वरूप को जाना करे, यही ज्ञान अन्य कुछ जानता है तो उसमें इसका कोई मान नहीं। ज्ञान ज्ञान को जानता रहे यही विज्ञान है, अन्य को जानता है तो वह सब क्षणिक और अधूरी बातें हैं, उनमें संसार फंद बंद नहीं हो सकते। फंद यानी फंदे हम कहते ना, यानी उसमें जो अटकता है वो फंद है, दंद फंद कहते हैं ना। जन्म मरण की परंपरा उनके अज्ञान से निवारित नहीं हो सकती, यही वह ज्ञान स्वरूप है जिसके द्वारा कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। और ये कुछ बनाना नहीं है, तो है रेडीमेड है, ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता और बाहर से हासिल करना तो मेहनत करनी पड़ती। जैसे धन तो चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, अपने हाथ की बात नहीं है और फिर भी उसके पीछे लगे रहते हैं, और ये रेडीमेड ज्ञान स्वरूप है। फिर भी ये ज्ञान ऐसा है, जानने का कार्य भी हर समय कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि उसको जरा थोड़ा उसका हैंडल मार के परिणाम का कार्य करना पड़े, ऐसा कुछ करे, ऐसा भी नहीं है। ये ज्ञान स्वरूप परिणमने का कार्य कर रहा है, परंतु इसको ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा कि ये जानने का कार्य मेरे में हो रहा है। उसको तो उस पर पदार्थ दिख रहे ना, बस उन्हीं का अस्तित्व मानता है, ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं कबूल करता, ये बात हो रही है। देखो अभी तो हम इतने स्वाध्याय है तो हमें ये तो पता है। अब हमारी हिस्ट्री देखो, या पूर्व भूमिका देखो, या औरों के देखो लौकिक में, तो यह जो कोई चीज़ है उसके सबको हाँ है, घर है, यह है, इतनी वस्तु है, इतनी वस्तु है, आत्मा है, ज्ञान है, आत्मा फात्मा होगा, आप इतना खिल्लाते हो तो होगा इसी तरह। इरफान ये है जाना किसने, ज्ञानी ज्ञान के स्वरूप को जानता है, ज्ञान का जानना इसी से तो आत्मज्ञान हो जाता है। यानी ज्ञान को ही ज्ञान, ज्ञान के द्वारा ज्ञान को ही तो जानना है और कुछ नहीं करना है, और लगन भी मालूम पड़ जाती है। हमें करना क्या है, क्या जानना है, कहाँ जानना है, जानने का स्वरूप क्या है, जानने का स्वरूप जानो, यह यथार्थ ज्ञान कहलाता है। बोधि दुर्लभ भावना में आता है कि सब मिलना सरल है। बोधि दुर्लभ, यह बोधि है ज्ञान, सम्यक ज्ञान वो दुर्लभ है, तो बोधि दुर्लभ भावना मालूम है। ये भावना क्या होती है, ऐसे कितनी भावना है, 12 भावना है, आपने शायद नाम सुना 12 भावना होती है, ये बोधि दुर्लभ नाम की एक भावना है ना। यानी जो 12 भावना में जो अलग अलग स्वरूप बताया है, भावना का अर्थ होता है चिंतन, बारंबार जो चिंतन होता है उसको भावना कहते हैं। उसमें ऐसी बात लिखी है कि सब मिलना सरल है, सोना चांदी सब मिलना सरल है, परंतु यथार्थ ज्ञान मिलना कठिन है। बोधि दुर्लभ, यथार्थ ज्ञान मिलना सोना चांदी सब सरल है, और सब ज्ञान मिल जाता है परंतु जानने का जानना कठिन है। क्या कहते हैं, और सब ज्ञान मिल जाता है ना, हमने मेडिकल ज्वाइन किया तो मेडिकल का ज्ञान हुआ, इंजीनियरिंग का हुआ, इधर का हुआ, उधर का हुआ, अब ये न्यूज़ खोलो तो सबके दुनिया भर का ज्ञान होता है, तो और सबका ज्ञान तो कहते सरल है, जानने को जानना कठिन है, ज्ञान स्वरूप को जानना कठिन। जानने वाला है वह क्या है, इस शोध का पता नहीं लगता अज्ञानियों को। ये जानने वाला मैं हूँ और मुझे स्वयं को अपने को जानना है, तो ये अज्ञानी को जानने वाले का पता नहीं लगता। मूल में भूल कर देना यह किसी बड़ी भूल, यह कितनी बड़ी भूल होगी, मूल में भूल कर देना, ये कर अलग चाहिए, भूल कर ऐसा नहीं है, मूल में भूल कर देना यह बहुत बड़ी भूल है। एक कथा है, चलो कथा आ जाएगी। एक दामाद अपने ससुराल गया, उस दिनों में उसका ससुर बाहर शहर में गया था, बीमार पड़ा रहता था, बीमारी की चिट्ठियां आ रही थी। कुछ दिनों में चिट्ठी आई जब दामाद भी वहां था, लोगों ने कहा लाला जी से चिट्ठी पढ़वा ले। अब लाला जी मन में पछताने लगे, अगर हम पढ़े लिखे होते तो चिट्ठी बांध देते। लाला जी दुखी होकर बैठ गए और दुख के आंसू भी आ गए। सास आदि ने जब रोना देखा तो सब यह समझे कि उनका ससुर मर गए। ऐसा समझकर घर के लोग रोने लगे। गांव में हल्ला मच गया, जमींदार भी आए, कहा क्यों रोते हो, वह बोला कर्म फूट गया है। जमींदार ने पूछा खबर आई है या कोई चिट्ठी आई है। चिट्ठी मंगाई गई, उसे पढ़ा तो लिखा था कि हमारी तबीयत ठीक है, 3 दिन में आ रहे हैं। अब जड़ का पता किसी ने न लगाया, मूल में था क्या, उसमें लिखी चीज का तो कुछ पता नहीं लगाया, उसका फल यह अनर्थ हुआ। हम मूल में क्या है इसका कुछ पता नहीं लगा, हम ज्ञानमय है, ये मूल है, सबसे निराले है, हम झंझटी नहीं है। मैं एक पदार्थ हूँ, इसमें कोई विवाद का काम ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य है वो प्रत्येक, मैं भी एक वस्तु हूँ, मैं भी एक पदार्थ हूँ। मैं अपने स्वभाव को भूल गया और स्वरूप को भूलने के कारण दुनिया भर में भटकता रहा। भूल क्या हुई, अपने को नहीं जाना, सब भूल गया। हम लौकिक में देखते हैं किसी का जो ऐसा होता है ना कि बहुत बड़े सेठ अमीर का पुत्र है और कुछ भूल जाता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किसका बेटा हूँ, और दर दर भटकता है रास्ते में कहीं ना कहीं, तो उसको देखकर कितना दुख होता है। अरे अरे बेचारे को कुछ नहीं याद है, कुछ स्मरण नहीं आ रहा है, कोई बोले उसके पकड़ कर ले जावे घर में बिठाए तो भी उसको कुछ मालूम नहीं है, तो उसकी तो कितनी दया आती है। और अपने यहाँ लिखा ना कि मूल में क्या इसका कुछ पता नहीं लगा, हम ज्ञानमय है, सबसे निराले, हम झंझटी नहीं है, मैं एक पदार्थ हूँ, इसमें कोई विवाद का काम ही नहीं है। मैं अपने स्वभाव को भूल गया और स्वरूप को भूलने के कारण दुनिया भर में भटकता रहा, जो देखा जो सुना बस उसी में ही मग्न हो गए। जो देखा, क्या देखा, पुद्गल, क्या सुना, पुद्गल, क्योंकि इंद्रिया तो बाहर को ही जानने का कार्य कर रही है, उसी में मग्न हो गए, यानी उसी को जानने में रुक गए। स्रोत का पता तो लगा गए, स्रोत यानी स्रोत एक्चुअली यानी मूल, मूल में क्या बात इसका पता लगा गए, अपने स्वरूप को जाने तो उसका सारा परिभ्रमण व आश्रव खत्म हो जाए। आश्रव कहा उन्होंने, आश्रव, आश्रव को माना है नाला, नाला के माने हैं न ला, न लावे इसी को नाला कहते हैं, न ना ला ऐसा। यह आश्रव क्या है? नाला। ज्ञान के विरुद्ध या ज्ञान के अतिरिक्त जो परिणाम है यह सब आश्रव है, इसे न लाए। न लाए हम कहते ना, तो छोड़ने लायक है, करने लायक नहीं। आश्रव ही सारे दुख उत्पन्न करता है। देखो आश्रव क्या है, शुभाशुभ भाव वो आश्रव है, मोह राग द्वेष के परिणाम आश्रव है, और वही हमारे दुख रूप भाव है। पर वस्तु से तो हमारा संबंध नहीं है, तो संबंध कहाँ, संबंध करके क्या स्थापित करता है? राग द्वेष अपने में परिणमता है। परद्रव्य के साथ तो इसका कुछ चलता ही नहीं है, वो अपने में ही राग द्वेष रूप परिणमता है और यही उसका दुख है। परद्रव्यों को देख देख कर और यहाँ अपने को सुखी मानता है, राग रूप को पाने की चेष्टा करता है, तो आश्रव ही सारे दुख उत्पन्न करता है। अपने स्वभाव को देखो तो एक दुख नहीं। देखो यहाँ तो मैं स्वभाव मात्र हूँ, स्वभाव और आश्रव भिन्न भिन्न है। सात तत्वों में भी उसको भिन्न तत्व का स्थान दिया है। मेरा तो स्वभाव भाव है कायम अनादि से अनंत काल तक, और ये आश्रव तो अभी उत्पन्न हुए है, और ये दुखरूप भाव है, वो मेरे स्वभाव में उसका कोई स्थान नहीं। तो अपने स्वभाव को देखो तो एक दुख नहीं, और अपने स्वभाव से बाहर देखो तो सब झंझट है। एक चैतन्य स्वरूप मात्र मैं आत्मा हूं, तो यहां पर अपने में स्वयं अपने लिए अपने आप सुखी हो। जब कोई बड़ी आपत्ति आवे, कोई झंझट आवे, तो इस आप को देखो, सब विपत्ति दूर होगी। क्षण मात्र को, स्वयं क्षण मात्र को, दो एक मिनट को यदि सबको भूल कर अपने ही स्वरूप को देखो तो सारे झंझट खत्म हो जाए। इसको फुर्सत नहीं ना एक मिनट के लिए अपने को देखने की, पर को देखने में इतना मशगूल है, अभी इसको देखो, इसका भी कुछ खाली समय है, तो अभी क्या करूँ, अभी कुछ को देखो, ऐसा लगता है इसको, है ना। शांति से बैठकर अपने को देखने की नहीं, गृहस्थी में है तो उसको करना ही पड़ेगा, मगर कभी कभी तो आत्मस्मरण का आनंद लूटना ही चाहिए। सब कुछ है मगर अपने स्वरूप की दृष्टि करके उसका आनंद तो लूट लो। अब झंझट है वह भी चलते हैं, तो कभी कभी आत्मस्वरूप की दृष्टि का आनंद तो लो, यही आनंद का उपाय है, यही आपकी साथ देने वाली चीज है। तो अब मैं अपने स्वरूप को देखकर अपने में अपने आप स्वयं सुखी हो। ये क्या कहना चाहते हैं? जो कोई आप मनुष्य रूप से, जो कोई आपकी जो स्थिति चल रही थी लौकिक में, जो कोई झंझट है, जो कोई चिंता है, वो रहेंगे। अरे 5-10 मिनट तो अपने लिए निकाल कर अपना आनंद का अनुभव करो, ये कह रहे। उसके लिए तो कुछ कहीं नहीं करना ना। बाहरी चीज के लिए हम क्या क्या नहीं उपाय करते, कहाँ कहाँ नहीं दौड़ते। अभी बीमार हो जाए तो पहले किसको दिखाना, क्या करते हैं, वो तो बेस्ट, अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए। एक ने बताया तो विश्वास नहीं, फिर दूसरे को, फिर उसको भी दिखाएंगे, क्योंकि सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए ना, कोई ऑपरेशन वगैरह बता दे तो वहाँ कितना कितना प्रयत्न है। अरे यहाँ तो क्या करना है, वो शांति से बैठ कर अपने स्वरूप को निहारना है और कुछ नहीं करना है। वो करता नहीं, बाकी सब कुछ करता। हाँ देखो आगे 29 नंबर। यस्मिन् ज्ञानमये यत्ने मत्त पाषाणवत्क्रमात् विकल्पो नापि तत्रान्ते स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। जिस ज्ञानमय आत्मा के यत्न होने पर यह जगत क्रम से उन्मत्त की तरह तथा पत्थर की तरह निश्चल प्रतिभासमान होता है, और उस यत्न के होने पर अंत में विकल्प भी नहीं रहता, ऐसे ज्ञान में आत्मा में अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूं। क्या कहना चाहते, देखो वो स्वयं ही उसको एक्सप्लेन करे, मैं ज्ञान मात्र हूँ। इस स्वरूप की बार बार भावना करने पर, बार बार भावना करना यानी बारंबार ये विकल्पों से या राग से विमुख होकर अपने में स्थिर होना है। आत्मभावना की बात आई थी ना, अपने आत्मा में एकाग्र होना, बारंबार उसी का अभ्यास करना, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, बाहरी पदार्थों से विकल्प हट जाता है। ये कैसे हटा हुआ, अभी कैसे नाश करूँ, कोई चिंता नहीं, वो तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, स्वयं ही वो हट जाएगा। ऐसी स्थिति में यह ज्ञानी जीव केवल अपने आप के तत्व में ही अनुरागी रहता है। अनुरागी नहीं, उसी का उसको अभी वही एक करने लायक रह गया उसके लिए, उसी का उसको प्रेम रहता है कहेंगे। अपने आप के ही आत्म तत्व के दर्शन में मस्त रहता है, यानी उसी की अभी रुचि रही, बाकी सब बाहर की रुचि नष्ट हो गई। बाहरी पदार्थों का ख्याल विकल्प उसका कम हो जाता है, यानी दुनिया रही, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसको देखो उसको, ये तो सभी विकल्प ही नहीं आते, उसके उठते ही नहीं है, क्योंकि तो बाहरी विकल्प खत्म हो जाते, कम हो जाते। दुनियावी लोग ज्ञानी को देखकर हंसते हैं कि क्या वह पागल हो गया है। इसके धन की सुध है न इसे बाहरी पदार्थों की सुध है, न इसे धन की सुध है न इसे बाहरी पदार्थों की सुध है, कैसी कहाँ चिंताएं लगाए हैं। यानी ये तो अपने धुन में है, उसको कोई परवाह ही नहीं बाहर। तो हम तो धन बढ़ाने के लिए और अन्य अन्य चीजों के लिए क्या क्या करते हैं, इसको कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है। ऐसा देखकर दुनिया के लोग उसे पागल कहते हैं कि यह पागल हो गया है, इसे धन की सुध नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी को पागल देखता है, उसके लिए क्या पागल की तरह है कि ये सुख अपने सुख से लबालब पड़ा है और यहाँ दौड़ लगा रहे हैं अंधे की माफक, अंधा तो कैसा दौड़ेगा। इसे धन की सुध नहीं, ज्ञानी अज्ञानी को पागल देखता है कि कैसा पागल हो रहा है कि दुनिया में अपनी कोई वस्तु तो है ही नहीं और बाह्य का लक्ष्य करके कैसा बर्बाद हो रहा है। यहाँ परमाणु मात्र भी तो अपना नहीं है, फिर भी देखो असार पदार्थों में विकल्प करके मर रहा है कि ये लाऊं वो लाऊं, आज मुझे ये करना है वो ये करना है, ये आज खरीदना है आज ये, कुछ भी सोच लो यहाँ मिलना कुछ नहीं है। हमें तो लगता है हमने इतना जोड़ के रखा है, हमें अपने सब बच्चों को इतना इतना सब दे के चले जाएंगे। तो कहते परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, इसलिए ज्ञानी अज्ञानी को पागल कहते हैं। अज्ञानी के चित्त में यह बात है कि जो अपना घर संभाले वह चतुर आदमी है, चतुर आदमी है, चतुर है हाँ, क्योंकि पैसा इकट्ठा कर रहा है, किसी को कुछ नहीं दे रहा है, कैसे संभाल संभाल के रख रहा है, और ऐसी बात दूसरे यानी ज्ञानी में नहीं देखता है। वो तो स्वयं तो कर रहा है, ज्ञानी तो ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है उसको। तब अज्ञानी ज्ञानी को पागल मानता है, ज्ञानी पागल हो गया है, इसे धन की कोई सुध नहीं है, चित्त कहाँ चला गया है, सत्संग में ही प्रायः समय बिताता है, इसको इसकी दुनियादारी की कुछ बात ही नहीं है, सत्संग करता रहता है और धंधे की चौपट हो रहा है धंधा यहाँ, तो उसकी कोई सुध-बुध नहीं है। इस तरह अज्ञानी ज्ञानी को पागल देखता है। परंतु जिन्होंने शुद्ध तत्व को पहचान लिया, जिनका किसी भी परतत्व में भ्रम नहीं, कोई भी शल्य नहीं, ऐसे ज्ञानी अज्ञानी को पागल कहते मात्र नहीं कहते, वो तो सचमुच पागल है, दिख रहे हैं उनको। जब सुकौशल स्वामी अपनी 20-22 वर्ष की अवस्था में विरक्त हो गए थे, उनको अनेक लोग पागल कहने वाले होंगे, अभी अभी शादी हुई तो घर छोड़कर चल दिए। इस तरह दुनिया के लोग अज्ञानी जन पागल कहने वाले हो गए, तो यह ज्ञानी भी लोगों को पागल देखते हैं, क्योंकि जो जैसे स्वभाव का है, जिनकी जैसी आदत पड़ गई है, उसी तरह वे दूसरे को देखते हैं। यह कल्पना हो जाती है यह मूर्ख है या पागल है। एक सूम की घटना है। एक समय सूम शहर में घूम रहा था। सूम किसी का नाम होगा। कपड़ा बांट रहा था, दान कर रहा था। जब सूम ने यह देखा तो वहां से उदास चित्त घर आ गया। स्त्री कहती है, क्या पति देव कुछ गिर गया या किसी को कुछ दे दिया है? क्या तेरा कुछ गिर गया या काहू को दीन? तिरिया पूछे सूम से, काहे बदन मलीन। सूम तिरिया ने स्त्री, हाँ सूम से ने वो आदमी से वो सूम यानी क्या? सूम उसका नाम है उसका। अरे आपका बदन मल
मंगलदास भी होता है।
आपका बदन मलिन क्यों है? तुम्हारा कुछ गिर गया या किसी को कुछ दे दिया है? सुम कहता है कि ना मेरा कुछ गिर गया ना काहू को दीन, देतन देखा और को तासो बदन मलिन। मैंने किसी को कुछ दे नहीं दिया है और न मेरा कुछ गिर गया है। मैंने दूसरों को देते हुए देख लिया है कि कैसे धन लुटा रहे हैं, कैसा यह सब दे रहे हैं, उसको मैंने देख लिया इसलिए दुख है। एक सुन की घटना है, ऊपर लिखा ना, शहर में घूम रहा था, कपड़ा बांट रहा था, इन्हें वहां कोई आदमी चाहिए, बीच में कुछ रह गया वहां पर, इन्हें कोई आदमी कपड़ा बांट रहा था दान कर, और उसको देखकर ये उदास हो गया। हाँ दूसरों को लुटाते देखा और दुखी हुए। उसको तो वह दाता पागल मालूम हुआ। इसकी हैरानी भी सूम को है। ऊपर लिखा है ना, वहाँ ये रह गया है उसकी स्टोरी में, क्या तेरा कुछ गिर गया ना, उसके ऊपर तीसरी लाइन। एक सूम की घटना, एक समय सूम शहर में घूम रहा था, कोई दाता कपड़ा बांट रहा था। मैं तो उस स्टोरी का कुछ अर्थ नहीं लेता। अभी पढ़ेंगे इसको, दो मिनट है। दूसरों को लुटाते देखा और दुखी हुए। उसको तो वह दाता पागल मालूम हुआ। इसकी हैरानी भी सूम को है। सत्यवादी को, सरल को, ध्यान से चलने वाले को, रूखा सूखा भोजन मिला उससे संतुष्ट होने वाले को लोग बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि लोगों के प्रति यह भावना है कि वह उतना होशियार है जो दूसरों को धोखा देता है। यानी क्या है, जो दुनियादारी में दूसरों को धोखा देके धन में वो होशियार है, किसी तरह से अपना धन बढ़ाए, इज्जत को बढ़ाए तो लोग उसे चतुर कहते हैं। मगर जीव का धन परिणाम है। जिनका परिणाम सही है धन वही है, क्योंकि भविष्य में वहाँ परिणाम फलेगा। इसलिए भाई, परिणाम निर्मल रखने का जो यत्न है वह सबसे बड़ा व्यवसाय है। यदि दो चार पैसे आते हैं और परिणाम मलिन होता है तो ऐसा लाभ नहीं, क्योंकि परिणाम अच्छा नहीं बना है। तो क्या बना है? बाहरी बात बनी है। तो यह तो बाहरी चीज है। मुख्य काम तो यह है कि तू निर्मल परिणाम करके ज्ञानमय रहने का यत्न कर। यह आत्मा का यत्न है। निर्मल परिणाम शुद्ध सहज हो जाएगा। इस ज्ञानमय यत्न के करने में यह ज्ञानी आत्मा पहले से तो पागल सा जचने लगता है। इसी ज्ञान का यत्न अधिक हो जाए फिर वह पत्थर सा निश्चल लगने लगता है। जब ज्ञान में पूर्ण अनुभूति जगती है तो उसका सब कार्य बंद हो जाता है। सब कुछ अंतर में मालूम होता है तब वह पाषाण की तरह निश्चल मालूम देता है, और फिर कितने ही विकल्प उसके अंदर नहीं रहते। ऐसा जो ज्ञान में अपने को कर दूं तो मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूँ। पत्थर जैसे हैं, जैसे मुनिराज है ध्यान में बैठे हैं तो बाहर में कुछ पत्थर जैसे बैठे हैं, क्योंकि बाहर के जगत से कुछ लेना देना नहीं, सब कुछ उनके अंतर ही अंतर में है। यहीं रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान पे सो जे सदा देते हो। अरविंद।